ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा की आज की मुरली एक शब्द में कहे तो वो है पढ़ाई। आज बाबा ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया है। पढ़ाई से क्या क्या होता है? पढ़ाई से ही कमाई होती है ना? कितनी कमाई करते हैं हम इस पढ़ाई से। एक एक ज्ञान का रत्न अनेक जन्मों के लिए वो सच्चे रत्न बन जाते हैं। तो पढ़ाई भी है, पर यही पढ़ाई कमाई भी है। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। फिर उस पढ़ाई से भेंट करे तो वो पढ़ाई तो केवल एक जन्म के लिए ही है। पढ़ाई पढ़ेंगे, बड़ा पद मिलता है, कमाई होती है, लेकिन एक जन्म के लिए। तो कौन सी पढ़ाई को ऊंची पढ़ाई कहेंगे? ये भगवान जो हमें पढ़ाते हैं वो ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि 21 जन्मों की कमाई होती है। पर इस पढ़ाई के साथ साथ फिर और क्या है जो उन पढ़ाइयों में नहीं है? बाबा कहते सफाई, आत्मा की सफाई भी होती है इस पढ़ाई से। वहां तो केवल वो राज विद्या पढ़ते हैं, दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन वो मैनर्स भी आए उससे, धारणा हो दिव्य गुणों की, वो तो नहीं होती है। और यहाँ तो बाबा की पढ़ाई से, बाबा जो इतनी हमें शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं, उससे आत्मा की सफाई भी होती है। और क्या होता है इस पढ़ाई से? चढ़ाई है ना, सफाई भी है फिर चढ़ाई भी है। पर फिर कभी कभी बाबा कहते लड़ाई भी है। क्यों लड़ाई है? क्योंकि माया विघ्न बनती है इस पढ़ाई में, योग में माया विघ्न बनती है। और आज बाबा ने वो बड़ा विघ्न बताया है। कौन सा विघ्न आता है? कईयों की इच्छा होती है हमें साक्षात्कार हो, तो ये साक्षात्कार भी विघ्न बन सकता है। हाँ, पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो सब कहे मेरे में मम्मा आती है, मेरे में मम्मा आती है। बाबा ने साफ मना किया, मम्मा किसी में नहीं आती है। हाँ, मम्मा ने तो दूसरा शरीर ले लिया है तो मम्मा नहीं आ सकती है। तो देखो ये माया है। कईयों को साक्षात्कार होता है तो अभिमान चढ़ जाता है। बाबा कहते ये भी माया है। और यज्ञ में कितनों को साक्षात्कार हुए लेकिन फिर भगंती हो गए। तो पढ़ाई अगर उसमें सही नहीं है तो माया विघ्न बनती है। कैसे? साक्षात्कारों की इच्छा। तो आज बाबा ने कहा इसकी बहुत संभाल चाहिए, क्योंकि कई बार लड़ाई भी है। तो आज बाबा ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया है भिन्न भिन्न रूप से। सुनते बाबा के माँ वाक्य। आज 20 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। इसलिए देखो मम्मा कितनी बार मुरली पढ़ती थी और मुरली से कैसे पॉइंट्स निकालती भी थी, फिर इतना क्लियर करके समझाती भी थी। दादियां भी हमारी बस मुरली ही उनका आधार था, और कोई दुनियावी बातों में तो वो कभी गई नहीं। तभी तो देखो कितनी ऊंची चली गई। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर अगर ये पढ़ाई सही नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, तो ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। अगर सही ज्ञान नहीं है तो वो बात खुशी की है लेकिन वो विघ्न रूप बन जाती है। कौन सी? उत्तर है साक्षात्कार होना, ये विघ्न रूप बन सकती है। ये है तो खुशी की बात, इसको साक्षात्कार हुए तो कहेंगे लकी हो आपको साक्षात्कार हुआ, है तो ये खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, शिव बाबा तो बिंदु है तो बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? कुछ भी समझेंगे नहीं, बस लाइट दिखाई दी ऐसे कहेंगे, पर समझेंगे क्या? और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को कौन सा विघ्न पड़ता है? कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। उल्टा नशा, हाँ मैंने तो साक्षात्कार किया है, भाग्यशाली हूँ मैं, मैंने साक्षात्कार किया है, पर ज्ञान की जो गहराई है वो है नहीं। हमारी मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया। मम्मा कहती थी मैंने तो एक वो कुछ भी नहीं देखा कभी भी साक्षात्कार में। और ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत किए, लेकिन बाबा तो मुझ गए ना, ये मैं जो देख रहा हूँ ये क्या है? विष्णु है, विष्णु ने कहा तुम तत्त्वम अहम चतुर्भुज तत्त्वम, बाबा तो मुझ गए, मैं इन जैसे कैसे हूँ। फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ, बाबा तो डर गए। फिर नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने उसको कहा ये दुनिया तुमको बनानी है, तो उसमें भी मुझ गया, ये मैं कैसे बनाऊंगा। तो साक्षात्कार तो हुए लेकिन मुझ तो गया ना, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। और मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन जो साक्षात्कार करते थे यज्ञ में वो मम्मा से आके पूछते थे, मम्मा मैंने ये देखा इसका मतलब क्या है? जबकि मम्मा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा थी तो उस ज्ञान के आधार से समझाती थी कि ये साक्षात्कार का मतलब क्या है। तो इसलिए बाबा कहते कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, बहुत अभिमान भी आ गया कईयों को। तो गीत है, पढ़ाई से क्या होती है? तकदीर बनती है। तो गीत है तकदीर के ऊपर, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ। तो तदबीर से ही तकदीर बनती है और बाबा वो तदबीर सिखाते हैं तकदीर बनाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना, सबने सुना ये गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है ना, पढ़ाई होती है पाठशाला में तो कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है ना, कि इस पढ़ाई से मुझे ये बनना है, तो एम ऑब्जेक्ट है। तो तकदीर को एम ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? पाठशाला में पढ़ना माना ही तकदीर बनाना। तकदीर बनती नहीं, पढ़ते नहीं तो क्या पढ़ेंगे, क्या तकदीर बनाएंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और इसकी तकदीर, इसका भाग्य नई दुनिया में पाते हैं। यहाँ भी पाते हैं, एक जन्म तो ये भी है ना। तो ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए जो पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते क्या हो गया, तकदीर तो बनाई उन्होंने, एक जन्म की तकदीर। वो बनते बनते अब पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, वो तो खत्म हो जाएंगे। हाँ, तकदीर तो बनाई, बहुत धन तो कमाया उससे, लेकिन बाबा कहते वो तो सब खत्म हो जाना है, वो तो खत्म हो जाएंगे। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। ऐसे नहीं अगले जन्म में भी जो कमाया है इस जन्म में वो चलेगा, तो वो इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तो कौन पढ़ाते हैं, वो तो राज्य भाग्य मिलेगा पढ़ाई से, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, डॉक्टर पढ़ा करके डॉक्टर बनाता है, तो जैसे डॉक्टरी का वर्षा मिला उस टीचर से, डॉक्टर वो भी डॉक्टर ही होगा जो पढ़ाता है, तो डॉक्टरी का वर्षा मिलता है, वो हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, लौकिक वर्षा बाप से मिलता है, फिर दूसरा वर्षा मिलता है अब पढ़ाई से। वो टीचर से जैसे वर्षा मिला पढ़ाई से, कोई तकदीर बना लेते हैं, पद पा लेते हैं, तो वो जैसे टीचर से वर्षा मिला अपनी पढ़ाई का, अच्छा। फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। अब गुरु के पास जाते हैं तो क्या चाहते हैं, क्या मिले गुरु से? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। मुक्ति में हम कैसे जाएं, कैसे इस बंधनों से हम छूटे, उसकी शिक्षा दो। हमको सदगति दो, गुरु को कहेंगे। यहाँ से निकाल, शांति धाम ले जाओ। अब बाप से तो वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति धाम में तो ले नहीं जा सकता है गुरु, वो गुरु करते हैं उसके लिए मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, बंधनों से छूटे, सब मेरे दुख खत्म हो। लेकिन बाबा कहते हैं गुरु तो मुक्ति धाम में नहीं ले जाएगा, तो बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। चलो टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, पद कोई मिलता है, टीचर बने, स्विंग टीचर, सिलाई का टीचर भी बने, सिलाई भी सिखाते हैं ना, तो वो भी तो पढ़ करके उसकी भी, उसका भी टीचर बन जाते हैं, फिर दूसरों को सिलाई सिखाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बाप से वर्षा मिला तो बस पूरा हो गया, वही वर्षा चलेगा, फिर पढ़ते भी हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, केवल बाप के वर्षे पर ही नहीं रहे, अपनी भी कमाई करें। अब गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं है। हाँ, कौन सी कमाई हो सकती है गुरु से? कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण करते हैं, जो उनकी गुरु ने, उनके गुरु ने उनको सिखाया वो सीख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, फिर उस पर भाषण करते हैं, तो उससे थोड़ी कमाई हो जाती है। अब ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। चलो तुमने कमाई की वो मिल्कियत बनाई और पिता लौकिक पिता से भी कुछ वर्षा मिला वो भी कमाई हुई, लेकिन बाबा कहते वो तो सब भस्म हो जाएगी, हाथ फिर भी खाली ही जाएंगे क्योंकि सच्ची कमाई तो की नहीं। जो हाथ भर तू जाए, हाथ फिर भी खाली ही जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकेंगे, नई दुनिया के लिए कमाई कोई इस पुरानी दुनिया के मनुष्य नहीं करा सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला कौन है? एक ही शिव बाबा है। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। और वो आते कब है? इस संगम युग पर वो आते हैं भी है संगम पर, भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है, थोड़े दिन है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे हाँ, जब उनको कहते ना थोड़े दिन है तो वो कहेंगे अच्छा फिर नई दुनिया कब आएगी, पूछते हमसे कब आएगी। तो बाबा कहते हैं फिर उनको समझ में नहीं आता है तो फिर कहते ये तो गपोड़े मारने वाले हैं, ये ऐसे ही कहते हैं नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, गपोड़े मारते हैं है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये तो गपोड़े मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। तो बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। लौकिक में पिता को बाबा का ज्ञान मिला और वो अगर अपने लौकिक बच्चे को कहेगा बच्चा बेटा अभी नई दुनिया आने वाली है, स्थापन हो रही है, तो बेटे को तो ज्ञान है नहीं और वो समझना भी नहीं चाहेगा, तो कहेगा मेरा पिता तो गपोड़ा मारता है। तो बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। अब तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, पुरुषार्थ नहीं करते, माना तकदीर नहीं बनाते तो गोया क्या कहेंगे बाबा उसके लिए। तकदीर नहीं बना रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है, ये ज्ञान उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो पुरुषार्थ नहीं कर रहे ना, कुछ भी समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, वो पढ़ाई पढ़ती है, बाबा का ज्ञान पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। बच्चे तो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे बन जाते पर माँ बाप उनके नहीं बनते। ऐसे होता रहता है, शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परिवार के परिवार आए यज्ञ की शुरुआत में, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया भी हुआ है ना, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी डैश डैश, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा। बाबा को छोड़ के चले गए तो बाबा क्या कहेंगे, हाय कुदरत ड्रामा। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, फिर बाबा कहेंगे हाय माया। माया उसको ले गई दुनिया में, तो हाय कुदरत, हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, दुनिया में तो बहुत चलता है डाइवोर्स केसेस, तो स्त्री पुरुष एक तो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे फिर बाप को फारकती देते हैं। लौकिक में बच्चे भी जो होते हैं ना, आप पिता से संबंध ही नहीं रखते, चला गया विदेश, वहां से कोई पत्र भी नहीं लिखेगा, कुछ भेजेगा भी नहीं, और माँ बाप यहाँ बेचारे दुखी होते रहते हैं, बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, विदेश भेजा और वहां तो माँ बाप को ही भूल गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बाप को फारकती दे देते हैं, अब यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ वो नहीं है, चलो फारकती दे भी दी, अब बाबा के नहीं बने तो बाबा को क्या कमी होगी, बाबा के तो ढेर बच्चे हैं। हाँ, तो अगर चले भी गए तो बाबा को तो कोई कमी होने वाली नहीं है ना। वहां चले गए, स्त्री पति ने स्त्री को छोड़ दिया, डाइवोर्स दिया, परंतु वहां तो ये होगा, यहाँ अगर चले गए तो बाबा को कोई कमी नहीं होगी, बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, बाबा यही कहेगा ड्रामा, बस और क्या कहेगा बाबा। तो बाबा कहते हैं तो वहां तो स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं, अब यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके, चलो दे भी दिया डाइवोर्स, हाँ चार भाई पति ने दे दिया या स्त्री ने दे दिया, तो फिर पति बंधा हुआ है, उसको कुछ तो कुछ एलिमनी देना ही है उसको, ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाइवोर्स दे दिया, उसको आजीविका के लिए उसको देना ही पड़ेगा भले डाइवोर्स भी दिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा डाइवोर्स तो दे न सके, चला गया तो चला गया, हाँ बाबा को थोड़ी कुछ उनको देना है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके, तो बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने, बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे, बाबा किसको उल्टा काम करने लिए तो नहीं कहेंगे ना जो खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल, बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है, ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेगा, कोई लौकिक गुरु ऐसे नहीं कहेगा कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। वो अगर शरीर छोड़ता है तो क्या अपने चेलों को भी साथ ले जाता है क्या, नहीं, वो कहेंगे भाई इनको मोक्ष मिल गया, लेकिन चेले तो उसके वही है, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। तो इस बाबा कहते हैं ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं कहेगा मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे गुरु कभी देखा कभी सुना किसी लौकिक गुरु ने कहा हो कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा और वो शरीर छोड़े तो सबको साथ ले गया हो, कभी सुना कभी देखा। गुरु लोगों से तुम पूछो कि इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं तुम शरीर छोड़ जाएंगे फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे, गुरु किसी गुरु से पूछो ये, ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, ये तो हो ना सके, चलो अगर वो कह भी दे पर ये तो हो ना सके, कभी कोई कह ना सके कि मैं तुमको तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा, कोई ये गुरु ऐसा दावा भी नहीं कर सकता है मैं तुमको मुक्ति धाम या निर्वाण धाम ले जाऊंगा, ऐसा प्रश्न भी कोई पूछ भी ना सके, कोई शिष्य गुरु से ऐसे पूछेगा भी नहीं कि अगर तुम मरोगे तो क्या आप सबको साथ ले जाओगे क्या, तो ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानों व गीता में आता है मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा वो भी बताया, मच्छरों सदृश, तो अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कैसे मच्छरों सदृश सब जा रहे, इतना बड़ा बड़ा मुंह दिखाया है विष्णु के विराट रूप में और सब उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में है भगवानों वाच मैं तुमको ले जाऊंगा, मच्छरों सदृश सब जाते हैं। अब सत्युग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, वहां के लिए नहीं कहेंगे मच्छरों सदृश है, कलयुगी दुनिया में तो मच्छरों सदृश है ना, इंसान कितने बढ़ गए हैं, जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं, शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी, भागना जरूर है मच्छरों सदृश, कभी बाबा कहते हैं टिड्डियों माफी जाएंगे, टिड्डियां देखी है, लोकस्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में, हमने देखी है, हाँ वो टिड्डियां आती है करोड़ों करोड़ों एक साथ होती है और एकदम सूरज को भी ढक देती है जब वो उड़ती है, और उड़ करके फिर कोई खेत पर जाके बैठ जाती है और मिनटों में वो खेत खाली एकदम खा जाती है सब, ऐसी 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 वो टिड्डियां होती है। तो बाबा कहते हैं हम तो भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह न सके, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। सब जानते हैं ना, अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमको अभी जाना है घर, ये शरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया। वैसे भी दुनिया में कहते हैं मनुष्य मर गया तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई, वो तो गया हा? तो आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये पुराना चोला तो छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बाबा ने कितना सुंदर मिसाल दिया है, ये पुराना चोला छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे ना हमारे लिए बन रहा है ये नया घर, हमारे लिए बन रहा है, तो बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें ये बनाऊं, ये करूं, वो करूं, हाँ ये करूं, ऐसे सजाऊं, यही बातें सोचेंगे नए मकान के लिए, इसमें ये बनाऊं, ये करूं, ममत्व सारा पुराने घर से मिटकर नए घर में जुट जाता है। अब वो हुई हद की बात, ये है बेहद की दुनिया की बात, या तो सारी दुनिया बदलनी है तो नई दुनिया के लिए बाबा कहते हैं तुम तैयारी कर रहे हो, ये है बेहद के दुनिया की बात, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं, तो जितना योग में रहेंगे क्या करेंगे, और एक तो योग में रहेंगे, दूसरा ज्ञान की धारणा करेंगे, तीसरा औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हाँ योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है, हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं, साहूकार बनना तो अच्छा है ना, देखो एक तरफ बाबा कमाई करा रहे हैं और दूसरे तरफ बाबा बेहद का वैराग्य दिला रहे, वो जो कमाई कराते हैं वो वैराग्य थोड़ी दिलाते हैं, वो तो और ही कहेंगे खूब कमाओ खूब कमाओ खूब धन इकट्ठा करो, और यहाँ बाबा कहते इस दुनिया से तो वैराग्य, हाँ नई दुनिया के लिए खूब कमाई करो पर इस दुनिया के लिए नहीं। तो बाबा कहते हैं साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना, वहां तो सब कुछ मिलेगा, बड़ी आयु भी मिलेगी, साहूकार भी बनेंगे, तो सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है, उसमें कमाई है। राजा बनना है तो फिर प्रजा भी तो बनानी है ना, अब ऊंच पद पाना है तो सबसे ऊंचा पद तो राजा रानी का है, पर ऊंच पद पाना है राजा बनना है तो प्रजा बनानी है, वो भी यहीं बनानी है, तो इसीलिए प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं तो प्रजा बनती जाती है ना, प्रदर्शनी में तो बहुत प्रजा बनती है, प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रलब्ध, तो पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबर वार तो होते हैं ना, राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा, सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। तो बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं, नई दुनिया सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजा ही मालिक है, राजा प्रजा सब मालिक है, सब मालिक होते हैं। प्रजा भी कहेगी ना, भारत हमारा सबसे ऊंचा है, हम भारत के नागरिक है तो भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर, भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़े ही है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता है, और धर्मों में कोई ऐसे के नहीं कहेंगे ये देवता था या देवता है, कोई और धर्मों में ऐसे देवता नहीं होते। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना तो है ना, मनुष्यों को ही समझाना है तो उनको तो समझाना है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है तो चित्रों पर समझाना है, तो तुम चित्रों पर समझाकर बतला सकते हो कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो ये पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सहित, ये कब आए थे, क्या पुरुषार्थ किया, कैसे ये बने, बाबा कहते तुम सब समझा सकते हो। अंगे अक्षरे यानी तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है, शिव बाबा का भी चित्र है। शिव है परम पिता परम आत्मा, तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाप क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तो मालिक बन सकते हो। शिव बाबा इस दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, ये भी देखो ना कैसा राज, शिव बाबा ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं तो सबसे पहले कान तो ब्रह्मा बाबा के है ना, सब तो सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये, चित्र तो शिव का दिखाते हो, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवताएं, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है, कितने ढेर है, ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक शिव बाबा से वर्षा भी कैसे लेंगे। जब तक बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे न बने ब्राह्मण न बने, तब तक शिव बाबा से वर्षा भी कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो न सके, ब्रह्मा की कुख की पैदाइश तो है ही नहीं, ब्रह्मा की तो मुख की पैदाइश है, तो कुख की पैदाइश तो हो न सके। अब देखो कुख की पैदाइश जो लौकिक में दादा लेखराज के बच्चे थे उन्होंने तो उस समय लिया नहीं ना, भले यज्ञ में थे लेकिन फिर तो फगंती हो गए कितने, तो क्या वर्षा पाया। तो बाबा कहते कुख की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली, तो मुख वंशावली ने वर्षा पाया। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, और अभी डबल विदेशी क्या कहेंगे, डबल विदेशी कहेंगे हम ब्रह्मा बाबा की संकल्प वंशावली है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के होते हुए तो डबल विदेशी पैदा नहीं हुए थे, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही पैदा हुए, लेकिन बाबा ने विदेशियों को याद तो बहुत किया ना, बच्चे विदेश में तुम जाएंगे वहां ज्ञान सुनाएंगे, बहुत बाबा के बच्चे बनेंगे, फिर विदेश के बच्चे आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, ये सब साकार में बाबा ने कहा था। तो मुख वंशावली भले नहीं कहेंगे पर संकल्प वंशावली है, और संकल्प वंशावली तो मुख वंशावली से भी ज्यादा तेज है ना, संकल्प की स्पीड कितनी होती है, और मुख की स्पीड, आवाज की स्पीड और सोच मन की स्पीड, रात दिन का फर्क है, कितना अंतर हो जाता है। तो देखो डबल विदेशी कितना आगे बढ़ रहे हैं, आज से नीचे भी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, बहुत डबल विदेशी आ गए हैं, नीचे उनकी रिट्रीट कल से शुरू होगी लेकिन आज से ही होनी है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है मुख वंशावली, तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वो गुरुओं के तो फॉलोअर्स होते हैं, हम फॉलोअर्स नहीं है, हम मुख वंशावली है। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, बाप टीचर सतगुरु तीनों एक में, ये ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान देते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो, ये आत्मा बोलती है। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है, पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापस ले जाने। तो आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो, आत्मा ही कहेगी। तो बाबा कहते हैं बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का है, इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है, देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, देलवाड़ा मंदिर में छत में स्वर्ग दिखाया है, तो है तो इसी सृष्टि पर। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो कहाँ दिखावे, कहाँ दिखावे कि नीचे तपस्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो देलवाड़ा मंदिर में छत में दिखाया है देवताओं को, नहीं तो कहाँ दिखावे, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वो भी होंगे तो यहाँ ना, होंगे तो इसी सृष्टि पर देवताएं, लेकिन छत में दिखाया है दिखाने के लिए कि भाई ये तपस्या करके ये बनेंगे, या होंगी तो यहाँ ना। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर भी समझाना चाहिए, ये शिव बाबा का यादगार है, शिव के मंदिर में जाकर समझाएं, ये शिव बाबा का यादगार है, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है वही शिव जिसको आप पूज रहे हो वो हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है, शिवलिंग तो कितने बड़े बड़े बनाते, बहुत बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे बनाते। वहाँ खजुराहो में हम गए थे, वहाँ बताया एक शिवलिंग, बताया इतना बड़ा है, इतना बड़ा बिल्कुल छत तक इतना बड़ा, हाथ भी ना पहुंचे, और कहते वो हर साल बढ़ता जा रहा है, पहले इतना बड़ा नहीं था, बढ़ता, अपने आप बढ़ता जा रहा, और वो जैसे ही छत तक पहुंचेगा विनाश हो जाएगा, ऐसे वहां कहते हैं। तो बहुत बड़ा बनाते हैं शिवलिंग। तो बाबा कहते हैं, तो तो इसीलिए फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। फिर इतना बड़ा है तो वो फल फूल कैसे चढ़ाए, तो फिर स्टूल पर चढ़ करके फिर उस पर चढ़ाते, ऐसे भी है। तो इसलिए बड़ा रूप बनाया है। अब इतना बड़ा तो कोई होता नहीं है, गाया भी जाता है, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी। बड़ी चीज हो, अगर वो बड़ी चीज हो भगवान या आत्मा, कोई बड़ी चीज हो तो साइंस वाले तो झट उनको पकड़ ले, साइंस तो इतनी होशियार है, झट पकड़ ले उसको, माना उसको फिजिकली उसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले। न इतना हजार सूर्यों से तेजोमय भी है, अर्जुन को तो यही साक्षात्कार हुआ, हजारों सूर्यों से तेजोमय का बस करो, क्योंकि बहुत तेज देखा। अब बाबा ऐसा भी नहीं है जो ऐसा तेज हो जो जला डाले, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। कई भगत लोग आते हैं और कहते हैं हमको ये ब्रह्मा बाबा का चेहरा देखने में आता है। कई लोग देखो भारत भक्ति मार्ग में तो शिव को में भी चित्र बनाते हैं, वो समझते शंकर लिंग है तो चित्र बनाते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी चेहरा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कई कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, उनको तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई दिया, तो ये चेहरा दिखाई दिया। परंतु शिव बाबा परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, बाबा कहते हैं ये उनको परिचय मिला ही नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है, जब तक बाप को न जाने यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, हाँ कई क्या क्या बताते हैं कि ये मैंने साक्षात्कार किया, ये देखा, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। पता नहीं क्या क्या देखते हैं, फिर कहते हैं इसका मतलब बताओ। कई तो हम बहुत सुनाते हैं, हमने ये देखा ये देखा, फिर हमको कहते हैं अर्थ बताओ, अभी क्या देखा, हमको भी कुछ समझ में नहीं आया क्या देखा। ये सब माया का विघ्न है, इसको भी फिर माया का विघ्न कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो, अब ये माया का विघ्न हमको नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा को ये सब नहीं आएगा। तो तुम बच्चे तो खुशी से कहते हो हमको तो बाप मिला है, मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती है। कितने साक्षात्कार होते हैं भक्ति मार्ग में, श्री कृष्ण को देखते हैं डांस करते, बाबा कहते हैं उसे सदगति नहीं होती है। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है, अनायास अपने आप, यहाँ मेहनत नहीं होती। अगर किसी को साक्षात्कार हुआ, कोई पुरुषार्थ करके साक्षात्कार हुआ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, भले साक्षात्कार भी हुआ पर पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कोई ऊंचा पद नहीं पाएंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना, मिलना है ना, हाँ भक्ति मार्ग में मिलता है। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है लेकिन फायदा कुछ नहीं। अगर किया भी तो बाबा कहते हैं चलो एक बिंदु देखा, एकदम ज्योति देखी, बस एक सेकंड का साक्षात्कार हुआ भी, पर फिर वो ओझल हो गया, फिर तो दिखा बंद हो गया देखना, फिर आप सोचते रहेंगे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो बाबा कहते हैं वो योग तो लगा नहीं, वो योग के बदले और वियोग हो गया, क्योंकि ढूंढते रहेंगे वो बिंदु कहाँ गया जो मुझे दिखा। तो बाबा कहते फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे अगर साक्षात्कार की इच्छा होगी तो, और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो श्री कृष्ण में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं, कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। पतित बने और यहाँ आकर के मुरली में बैठे, बाबा कहते वो अपना नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। हम समझते किसी को पता थोड़ी चलेगा मैं भिखारी बन के फिर आया हूँ क्लास में, किसको मालूम नहीं पड़ेगा, पर बाबा कहते बाबा को थोड़ी ठग सकते हैं, वो तो अपने को ही ठगते हैं। तो अपने को ही ठगते हैं, बाप को ठगने की तो बात ही नहीं है, बाबा को क्या फर्क पड़ेगा, उनको थोड़ी कुछ नुकसान होगा। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? दुनिया में तो लोग एक दो को झूठ बोल के चलो पैसा लूट लेते हैं, ले लेते हैं। अब बाबा को अगर सच नहीं बताया और अगर पूछा और झूठ बोला तो क्या बाबा को ठग सकेंगे क्या? बाबा से पैसा लेना है क्या? तो बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्री मत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा, खुद ही समझो। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं तो और ही औरों को दुख देते रहेंगे। अब पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं और फिर तो क्या करेंगे, दुख ही देंगे ना। बाबा की मुरलियों में तो कितना आता है बच्चे दुख नहीं धोपा दुख ही देते हैं, कुछ ना उल्टा सुल्टा बोलते ही रहते हैं, किसी का किसी को रंज करते हैं, नाराज करते हैं, तो बाबा कहते हैं क्या पद पाएंगे। औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, वो समझ जाए, वो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उसकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है, सबको जाना है, चाहे प्यार से जाओ चाहे मार से जाओ, जाना तो सबको शांति धाम में है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं, आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है, खाली देखने आना ये कोई बड़ी बात है क्या, पर वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे, राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, ये माला भी उन्हों की बनी हुई है, 108 की माला किनकी बनी है, जिन्होंने स्कॉलरशिप लिया है, ये माला भी उनकी बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी, ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं, 16108 की भी तो माला है ना, तो हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते हैं, वो गुप्त नहीं रह सकते, उनकी उनका जो चार उनकी चलन से पता पड़ जाएगा ये पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, वो गुप्त नहीं रह सकते हैं, बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती है कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती है ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी। वो भी कहती है बस ये थोड़ा सा पढ़ना है, ये पढ़ाई पूरी करके फिर मैं बाबा की पूरी बन जाऊंगी तो इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपने हीरे जैसा अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। हाँ कई कहते हैं कितनी खुशी होती है, जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का, न समझने का शौक है न समझाने का शौक है। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है, नयों को ज्यादा शौक होता है, इतनी प्यार से मुरली पढ़ते हैं, इतना टेंशन देते हैं, और पुराने समझते हमको तो सब मालूम है ना, बाबा वही वही सुनाते, तो और ही नयों का शौक बढ़ जाता है, वो आगे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों का, नयों को है, वंडर है ना। फिर क्या कहेंगे, अब पुरानों का शौक कम हो गया, नयों का शौक बहुत है, तो क्या कहेंगे, ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे, यहाँ भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं, अब जितना जो पढ़े उस अनुसार प्राप्ति करे। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, कितनी बाबा ने शिक्षाएं भी दी, सावधानियां भी दी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। है वो कमी, लेकिन वो कमी छिपाते हैं तो ये भी जैसे खुद को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमद की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमद की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है अमृत वेले, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अव्यक्तिशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो के अंतर्गत संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। क्या? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, हमारी बातचीत भी बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे आत्माएं आत्माओं से बोलती है, या फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोलती है। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, कुछ डायरेक्शंस है और फिर आज का जो प्रोग्राम है वो भी आपको बताएंगे, इसलिए डबल विदेशी कोई भी उठेंगे नहीं। ऑल डबल फॉरेनर्स प्लीज स्टे सीटेड आफ्टर मेडिटेशन।